अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नयमाम चरणान्तिके। आगे बोलबो कुछु बोलो कुछ तारपर हैं बोल जा है कुछ बोल। ओ दाड़िये बोलो।
ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदा श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव परिप्राजिका आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करता। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण में मेरा यथाजोग्य प्रणाम। आज हमारे एक बहुत अच्छा दिन है। कहते ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता में। कहते इसका तात्पर्य है कि जीवन में सत संतों का शुद्ध भक्तों का जीवन में कब दर्शन मिलता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कहते ब्रह्मांड भ्रमण करते करते कौन कौन मतलब कोई विशेष सौभाग्यवान व्यक्ति को जीवन में संतों का दर्शन मिलता है। जिसको श्री नारद जी कहते हैं दुर्लभ मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। एक में तो ये मानव जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है, कहते उसमें भी दुर्लभ है जीवन में किसी शुद्ध संतों का दर्शन मिलना। जिसके लिए भागवत में बताया तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग न अपुनर्भव। जीवन में एक लव अगर जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो कि जिसको साथ में स्वर्ग और मोक्ष भी बराबर नहीं किया जा सकता है। कहते सत्पुरुषों का शुद्ध संतों का दर्शन इतना दुर्लभ है कि ठाकुर जी का दर्शन सुलभ है। ठाकुर जी खड़े हैं दर्शन कर लो, लेकिन ठाकुर जी हमारा कल्याण नहीं करते। अगर हमारा कोई कल्याण करता है भगवान का भक्त लोग ही हमारा कल्याण करते हैं। इसलिए जितने सारे शास्त्र का जो निचोड़ सारे शास्त्र का जो सिद्धांत है सारे शास्त्र एक स्वर में बताते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कहे। हर शास्त्र में एक ही उपदेश दिया है जीवन में अगर कोई सुख और वास्तव जीवन में कोई शांति चाहता है केवल सत्संग द्वारा ही जीवन में कोई सुख को प्राप्त कर सकता है। जिसको एकादश स्कंध में कृष्ण स्वयं उद्धव को कहते हैं, कहते हैं उद्धव जी, अगर अभी मुझे कोई जीवन में प्राप्त किया है, छोटे से छोटे जाति, पशु पक्षी कीट पतंग बंदर इंसान जो कोई अभी तक मुझे प्राप्त किया, केवल सत्संग द्वारा ही मुझे प्राप्त किया, और कोई उपाय नहीं है। एक समय भगवान कृष्ण सारे शास्त्र को उन्होंने बुलाए, वेद उपनिषद पुराण वेदांत सूत्र महाभारत गीता सब शास्त्र को भगवान एक दिन बुलाए। भगवान बुला करके भगवान ने उनको प्रश्न किया, कहते मेरे के प्रश्न का उत्तर दो। बोले बताइए क्या प्रश्न है। कहते मेरा प्रश्न है, जीवन में अगर सही शांति अगर कोई पाना चाहता है, उसको कोई उपाय है? सबसे सरल उपाय क्या है? सबसे सरल क्या उपाय है जो कि भगवान को संतुष्ट कर सके और भगवान आसानी से संतुष्ट हो जाए और जीव को परम शांति मिले? ये मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने वेद को खड़ा किया, कहते वेद बताओ तुम्हारा इसी विषय में क्या विचार है। तो उन्होंने वेद खड़े होकर के श्यामम छबलम प्रपदे छबलम श्यामम प्रपदे, उन्होंने वेद के सारी ऋचाओं को उन्होंने एक एक कर उच्चारण किया। भगवान सुन करके बोले हाँ तुमने कुछ बोले हो लेकिन तुम्हारे वाक्य में मैं पूरा संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए तुम बैठ जा। फिर उन्होंने उपनिषद को खड़े किए, बोले उपनिषद इसी विषय में तुम्हारा क्या विचार है। तो उपनिषद अभी बताए सा परानुरक्ति ईश्वरे, हाँ भगवान में परा अनुरक्ति होना ही जीव का परम कल्याण है। इसलिए उन्होंने तरह तरह का उन्होंने वो भी अपना सारे सिद्धांतों को उन्होंने स्थापन किया। तो भगवान ने कहा हाँ तुम भी कुछ बोले हो लेकिन मैं संपूर्ण मेरा प्रसन्न में नहीं हूं। तब उन्होंने वेदांत सूत्रों को खड़े किया, बोले तुम्हारा क्या विचार है। उन्होंने बोला था तो ब्रह्म जिज्ञासा, अगर वो ब्रह्म को वही पाना चाहते हैं, सुख ही पाना चाहते हैं, कहते तो भगवत चरण में शरणागत हो जाए, जन्मादस्य जतः जिनसे सारे जगत का सृष्टि प्रलय हुआ है। उन्होंने भी अपना बड़े बड़े उन्होंने सूत्र को अनया तरह तरह उन्होंने सूत्र को उच्चारण किया। भगवान ने कहा तुम तो कुछ बोले हो लेकिन मैं संपूर्ण संतुष्ट नहीं हूं। तब उन्होंने पुराण को खड़े किया, बोले पुराण बताओ तुम्हारा क्या विचार है। विष्णु पुराण अग्नि पुराण गरुड़ पुराण उन्होंने सारे पुराण को उन्होंने खड़े किया, बोले तुम लोगों का क्या विचार है। तो उन्होंने वर्णाश्रम आचारवत पुरुषन परपुमान विष्णु आराध्य पंथ अन्य कारण वर्ण आश्रम के धर्म को जाजन करो, धर्म अर्थ काम मोक्ष इसी विषय में उन्होंने तरह तरह का वो अपना अपना लेक्चर दिया। भगवान ने कहा तुम लोग कुछ बोले हो लेकिन मैं संपूर्ण संतुष्ट नहीं। तो उन्होंने गीता को भी बोले, बोले गीता तुम्हारा क्या विचार है। गीता में सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज मन मना भव मद्भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुरु यज्ञार्थात कर्म न अन्यत्र लोक एवं करबंधन जत करोसी जत स्नासी जत जोसी तदासी जत। वो भी एक एक करके भगवान का चरण में शरणागति की बात बताए। भगवान ने कहा हाँ ये तो ठीक है लेकिन मैं संपूर्ण संतुष्ट नहीं हूं। तब अंतिम में उन्होंने भागवत को खड़े किए, बोले भागवत बताओ तुम्हारा क्या विचार है। सबके सब भागवत को मुंह देख रहे हैं, कहते भगवान तो हमारे सारे बात को रिजेक्ट कर दिया, बोले तुम लोग सही से मेरा कोई आंसर नहीं दे पाए, लगता है ये भागवत सही आंसर देगा इसलिए भागवत का मुंह को सबके सब देख रहे हैं। तो भागवत खड़े होकर के उन्होंने दो श्लोक उन्होंने उच्चारण किया है, कहते अगर जीवन में कोई परम शांति परम सुख हाँ जीवन में परानंद को कोई प्राप्त करना चाहता है, उन्होंने पहला श्लोक उन्होंने उच्चारण किया चड़ भरत महाराज रहुगण महाराज को जो उन्होंने उत्तर दिया था, रहुगण न तपस्या न जाति न इच्छया न निर्वाप न गृहत बा नैव छंदसा नैव जलाग्नि बिना महत पदो रजो विषकम। कद रघुगण न तपस्या, कोई अगर सोचे खूब हम तपस्या करें, तपस्या करते करते हमें शांति मिल जाएगी सुख मिल जाएगी, रघुगण के तपस्या का द्वारा भी भगवान को पाया नहीं जाता है, जीवन में सुख ही नहीं होता है। न जाति, कोई बहुत बड़ा जाति ऊंचा जाति में कोई जन्म ग्रहण कर ले कहते उसमें कल्याण हो जाए, कहते न जाति, कहते न इज्जया, दिन भर पूजा पाठ हम करते रहते हैं दिन भर पूजा पाठ करो, खुद उसमें भी होने वाले नहीं, ना निर्बाध पना, कोई घर छोड़ करके सन्यास हो जाए कहते उसमें क्या हो जाएगा, कहते उसमें भी कल्याण होने वाले नहीं, नहीं भाई छंदसा कर दिन भर वेद पाठ करते हैं उसमें क्या कल्याण हो जाएगा, कहते उसमें भी कल्याण होने वाले नहीं, नहीं भाई जलाग्नि, कोई जल अग्नि को दिन भर पूजा करते रहे कहते उसमें भी क्या हो जाएगा, कहते नहीं। तो बोले सबके सब नहीं 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 को तो कुछ तो कुछ तो कोई रास्ता होगा, कहते हाँ एक ही रास्ता है, कहते बिना महत्व पदो रजो भी से कम, जब तक कि जीवन में कोई शुद्ध संत शुद्ध वैष्णव सचमुच से कोई संपूर्ण रूप में जो कृष्ण रस भाविता मती क्रियताम कुतो भी यदि लभ्यते, सचमुच से कृष्ण रस में जो एकदम पगे हुए हैं, जिनका संपूर्ण कृष्ण रस में भरपूर हुए एकदम शराब और है, जब तक ऐसे कोई संतों के चरण में कोई अभिषिक्त नहीं होते हैं, उनको चरण में शरणागत नहीं होते हैं, सारा दुनिया कुछ करने पर अटंत तीर्थानि पटंत आगवान सब सारा दुनिया कर लो, शास्त्र बोलता है कुछ उसमें होने वाले नहीं है। तब हमने दूसरे श्लोक उच्चारण किया, प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप को जो बात बताया था, हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद ये बताओ तेरे बुद्धि इतने कृष्ण रस में कैसे डूब गया है, सारे बात पर तुम तो कृष्ण 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 भगवान का भजन श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद हर बात में तुम भगवान भगवान का भक्ति भक्ति के बात बोलते हो, क्या ये बुद्धि ये संधा अमर जिसको पास में हमने भेजा था तुमको लेखा बड़ा सीखने के लिए, वे तेरा बुद्धि को बिगाड़ दिया क्या, तेरे बुद्धि को भगवान का चरण में वो क्या लगा दिए, कहते पिताजी इतने आसानी बात नहीं, ये मति भगवान का चरण में लग जाए, सारा दुनिया में सब कुछ कर लो ये सहज में ये मति भगवान का चरण में लगने वाले नहीं, कहते कैसे लग सकता है, कहते नहीं सा मति स्थावत उरुक्रमांग्री स्पिशार्थ अनर्थ अपगमम जदर्थ मही असाम निष्किंचना नाम न वृणित जावत, कहते पिताजी जब तो कोई निष्किंचन भगवान को जीवन में जो सर्वस्व भगवान को बनाया ऐसे कोई संतों को चरण में किसी भक्तों को चरण में जब तक अभिषिक्त नहीं होता है, उनका चरण में जब तक शरणागत नहीं होता है, किसी को द्वारा भी कल्याण जीव गाने वाले नहीं, सारा विश्व ब्रह्मांड सब कुछ कर लो, उपाय क्या है, केवल शुद्ध सचमुच से जो भक्ति करने वाले भजन करने वाले शुद्ध वैष्णव परंपरा में जो वैष्णव आए, हम कहेंगे किसी साधु का चरण में चले जाओ, जगत में तो बहुत साधु है कर्मी जोगी ज्ञानी भोगी कितने तरह का है, कहते नहीं जानी चाहिए शुद्ध वैष्णव परंपरा में अवैष्णव उपदिष्ट न मंत्र न निरम ब्रजे, अगर वैष्णव को छोड़ करके इधर उधर अगर हम कहीं जाएंगे जीव का उसमें कल्याण नहीं है, शास्त्र बोलता है ऊपर क्या जाओगे निरा जाओ, कहते नरक में जाओगे, इसलिए हमें कोई संप्रदाय की संप्रदाय बिना जे मंत्रास्ते विपल बता, इसलिए हमें कोई संप्रदाय शुद्ध वैष्णव परंपरा में जो संत आए हैं सचमुच से उसको जीवन में जो आचरण करते हैं अगर उनको चरण में हम शरणागति कर लेते हैं, कहते जीवन में तब भी जीविका परम कल्याण, ये भागवत ही सिद्धांत दिया जिसको सुन करके भगवान का हृदय गदगद हो गया, कहते यही बात मैं सुनना चाहता था, इसलिए केवल जीव का परम कल्याण है शुद्ध संतों को चरण में धूल में अभिषिक्त होना, अभिषिक्त मतलब क्या है, क्या आए अगुरु करने कर दिया नहीं, संग का मतलब सम्यक रूप में अनुगमन, वो जैसे इसी परंपरा में जिस रूप में वो साधन भजन करते हैं संपूर्ण रूप में उनका साधन भजन को जीव में अपना जीवन में अपनाना, हाँ इसको अभिषिक्त कहते हैं, इसलिए सचमुच अगर उनका आदेश उपदेश को पालन करते हुए अपना जीवन में आचरण करे तो तभी हमारा परम कल्याण, इसलिए आज हमारे अहोभाग्य हमारे बहुत सौभाग्य है जन्म जन्मांतर का समझो करोड़ों करोड़ जन्म का कोई पुण्य हमारा संचय उदय हुआ है जिसका फल स्वरूप आज हमें ऐसे शुद्ध वैष्णव परंपरा में हमें कोई संतों का दर्शन मिला, इसलिए कहते कृष्ण रस भाविता मति, ये बहुत बड़ी ये वाक्य बहुत बड़ी महत्वपूर्ण वाक्य है, इसलिए कृष्ण रस भाविता मति ये मिलना जगत में सबसे दुर्लभ है, हाँ इसलिए कहते जो कुछ हो उसको दे करके उसको खरीद कर लो, इसमें ही जीव का परम कल्याण, इसलिए आज हम गुरु जी को दर्शन मिला, उनके चरण में हम प्रार्थना करेंगे, वे आशीर्वाद हम लोग को करे, जैसे जन्म जन्मांतर में ऐसे संतों का संग हमें मिलते रहे। वंशाटल उत्तर भैस कृपा सिंधु भाई बच्चो पता नाम पावन भो वैष्णव भो नमो नमो।
I think there are so many devotees who don't know pure Hindi. For them, in brief, you should explain in English what he told. Brief. बहुत से ऐसे हैं। There are so many.
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पूज्यपाद रसानंद प्रभु हैज स्पोकन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वी बिगिन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। ही स्टार्टिंग फ्रॉम द चैतन्य चरितामृत पयार, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। दैट we have been taking birth after birth, birth after birth, millions of birth. Sometimes we are human being, which is a very fortunate birth, but other times we are among 8,400,000 species of life, beginning from aquatics, then trees, creepers, and then reptiles, and then animals of 3 million types, and then coming into forms like, because there are 400,000 species of human types, so we become sometime aborigines, sometime we even become cannibals, and if we are very fortunate, then we take birth in a educated, wealthy, beautiful form we have, and education. Janma Aishwarya Shriya Shruti Bhi. We have good birth, good wealth, nice education and beautiful attire, which is very fortunate. But it's a pity that still we do not take to Krishna consciousness. So, Brahmanda Bhramite, that somehow or other, if by causeless mercy, Srila Gurudev, Krishna's merciful form, if he somehow or other happens to come in our life, and by knowingly or unknowingly, if we happen to serve him, and that is the beginning of all auspiciousness. So, durlabh manusam janma, dehinam chadbhanguram. Even though we live, say, 100 years of life, but actually by the calculation of demigods, or by the calculation of the lifespan of Brahma, it's just a flash in time. Just like we see some birds and they live for only few days, and within those few days they take birth, they grow up, they give birth to babies, and then they become young, and then they become old, and then they die. This all happens within a few days time. Similarly, 100 times of ours is a relative to us. It may be 100 years for us, but actually, it's a flash in time. We take birth, we go through so many transformations, and that is a so-called happiness or distress in this material world, and then we die. And we die like a pitiful death. Sometimes there are so many tubes are coming from our bodies. In hospital, we die and remembering nothing, only what we gone through our life. So, durlabham manusam janam. This human birth is very, very rare. So why should we not avail this opportunity to start our spiritual journey? Hare Krishna. Hare Krishna. So Rasanand Prabhu gave a nice example that all the scriptures were once invited by Krishna to tell what is the essence of life. So Vedas are the origins of all the scriptures. So Krishna told Vedas, yes, you please speak up what is the ultimate welfare for the human being. And Vedas, they are very, very detailed scriptural knowledge. They are dealing with karma kanda, they are ritualistic ceremonies, which have nothing to do with pure spiritual life. Of course, it is a beginning of spiritual life as varnashram dharma. But then you come to Gyan Kanda, you are always speculating, oh, is this Brahman or is this Krishna or is human really spiritual? So these types of all speculation knowledge is under Gyan Kanda, and then begins Upasana Kanda. So the Vedas, they started, you know, speaking in very, very detail that Shavala Chamam Prapadde, Chamam Chavalam Prapadde, which is very, very hard to understand how Krishna and Radha are one. Even though Vedas are telling Chabalam Shyamam Prapadde, that Krishna and Radha are the reservoir of all pleasures. But how they are, they cannot make us understand. Then the chance was given to Upanishadas, which are the, of course, Vedvanis, which are the hymns of Vedas, but in a nutshell. So Upanishadas, they started speaking Paranurakti Ishvare. If you have taken a human birth, then it is only worthwhile if you have pure love unto the lotus feet of Krishna. But how to have that pure love? Upanishadas, even though they tell indirectly, we do not have intelligence to understand that. So then Krishna was not satisfied and he gave chance to Vedanta Sutra. And because after writing Vedas and Upanishadas, Vedvyas wrote Vedanta Sutra. So Vedanta Sutra, they are again essence of Vedic knowledge, but still they are very difficult. So Vedanta Sutra said, Athato Brahma Jigyasa. Oh, now you have taken birth as a human being. Now you are done with the material world. You think you are done with the material world. And come to me. Athato Brahma Jigyasa. Now it's the right time for you to think that you are not this body. You are not this body. You are the spiritual soul. But that will not do. Because our mind is always, always engaged. It wants something all the time. If we know we are not this body, that's it. We want so many different moods. Sometimes we want parental, sometimes we want conjugal, sometimes we want fraternal. So Vedas do not elaborate on it. So Krishna was not satisfied, and then Krishna told Puranas to tell that what is the essence of life. So the Puranas, they have been very easily written by, Vyasadeva in a manner that we can easily understand them. And Puranas begin from Varanashram Dharma. That unless we are situated in a proper succession of material and spiritual life combined, we are not going to enter into Krishna consciousness. How? The Puranas state, in Vishnu Purana it's been said, Varanashrama Charavatam Purushaha Paramapuman Vishnu Aradhyate Pantha Na Tattosha Karanam. If you really want to satisfy Supreme Lord Vishnu, then you have to be situated in Varanashram Dharma. How? There are so many injunctions in Puranas. Atithi Devo Bhava. The guest is as good as Lord. Because Atithi, he has come without any call. In these countries, if you have to go to the neighbor, you make a phone call. But in India, Atithi means one who comes without any information. And you are supposed to serve him. Even if you are ready to eat your food, your plate of dinner or lunch, but if Atithi comes, a guest comes, you are supposed to feed him first. And by feeding him, what will happen? You will not become very selfish. In these countries, we are very, very selfish because everybody is on its own. I am working. I am making my own money. I have my own house. Who are you? What is your business? So Vedas say, no, no, no. This life is not for like that as animals, those because they, you know, fight and kill each other for food. Krishna is supplying everybody to anybody, everything to anybody. For an elephant, Krishna is supplying 40 years of food every day. Because if an elephant doesn't eat 40 years of food, he will die. So, Atithi Devo Bhavo, Matri Devo Bhavo, Pitri Devo Bhavo, that our mother, our father should be regarded as Supreme Lord, as the representative of Supreme Lord. If we cannot serve them, how we can serve Krishna? Huh? What was the English saying? And just slipped out of mind. Anyway, so Krishna was not satisfied with this, because Varnashram Dharma is good, but it is not the religion of the soul. It is the religion of the body. Of course, we start by serving through our material body, but one day we have to come to the level of a spiritual soul. Then Krishna told Bhagavad Gita to come and speak about what is the essence of life. And Bhagavad Gita started speaking, Yat Karoshi, Yat Ashnasi, Yat Juhoshi, Dadasi Yat. And whatever you do, Yat Karoshi, whatever you Ashnasi, whatever you eat, do it for me. That is good. If we make nice food for Krishna and then we offer him with love, the love with which we offer, he certainly accepts it. And the food becomes blessed, free of sinful activities, and we become pure life after life. This is the process. But whatever we go and buy from the market, who is supplying it? We think we bought it and we offered it. We bought it only because Krishna gave us money, education, to make money. So that also is a sort of bodily consciousness. So then Gita spoke, Sarvadharmana Paritajam, Maam Ekam Sharanam. That all these are actually social religions for you to slowly come on the level of spiritual, pure spiritual consciousness, and then come into the lotus feet of a pure Vaishnava to become surrendered soul. But how to become surrendered, Gita does not tell in full detail. Then Srimad Bhagavatam in the last spoke, and the shloka which Srimad Bhagavatam spoke in the last was Naisha. It's a upakhyan in Srimad Bhagavatam. King Bharat, he was a very renounced king, and he left his kingdom when he was only 50 years of his age. Half of his age has passed. He left the kingdom as something very abominable. He did not even look back when he left, as we go past toilet, and then we don't want to look back. It's so frustrating. And he left his kingdom. He went to forest and started worshipping Krishna. And worshipping, he came to the level of very high bhakti, which is called bhav bhakti. All the time he was thinking of Krishna spontaneously. We have to, of course, chant 16 rounds. Sometimes we are sleeping and we are chanting. But in his case, he was spontaneously remembering Krishna. But somehow or other, he developed attachment with a baby deer, and he forgot his sadhan, his practice of spiritual life, and he take birth as Jad Bharat. As a Brahmana, he took another birth, but he was remembering his last birth, and he also remembered what mistake I committed, that I started developing attachment with a baby deer. So this birth, I'm not going to do that mistake. So he was always remembering Krishna. And one day it so happened that King Rahugana, who was the king of the whole world at that time, he came to see Kapil Dev. And as he was coming to see Kapil Dev, his palanquin was being carried by four carriers, and he had to cross a river, and one of the carriers was not good. He was tired or maybe fatigued. So they went to look for a person who was as strong as a carrier, who can, carry the planking. And somehow or other, by Krishna's mercy, they found this Bharat, Jad Bharat, who looked as a, parasite sitting at one place, very strong body, because he had no worries, no concern for food, grain. So he had developed very thick body. very fat. So they brought him, and then this Bhajana Bharat started carrying the plankin, but he was very conscious that if I happen to put my feet on a, you know, fish or anybody in the river, then I will again incur some karma, and karma have reaction, and for reaction I will again take birth. So he was, by his feet, he was moving the water like this, and the plankin was shaking. And the king said,
in brief,
don't you know I'm the king?
You should tell in brief. He told not so much.
The Rahugan, he chastised Bharat, and Bharat said that, you are warning me that I'll kill you, but you can maximum kill my body. Body is already dead. It is beating like the dead horse, because I'm not living on the level of body, I'm living on my soul. So King Rahugan, he immediately came down off that plankin, and he bowed down to him and said that, I know you are not an ordinary person. Please speak to me the truth. So the Rahugan said, which is stated in Bhagavatam, Rahugan nata tapasa nayati na na indaya na naeva jalagni surya. That the spiritual knowledge is not inspired in your heart by going to Himalayas and doing austerities. That is not the way out. And not also by jalagni surya. In India, the yogis, they put fires underneath, side, this side, and above there is sun shining, full, boiling hot. Still, even though they do austerities, spiritual knowledge is not going to inspire. This is no way out. Only way out is that you must serve the lotus feet of Krishna's pure devotee. So this was spoken by Bhagavatam, and another shloka was spoken by Bhagavatam, which also has the same meaning, that we should by all means serve a pure devotee, and we are very fortunate to have a pure devotee as Srila Gurudev within us, and we should be blessed if we receive a sprinkle of what he says. Thank you very much.
Hare Krishna. Today is Gundicha Mandir Marjan in Jagannath Puri. And tomorrow, kal, ve Jagannath Mandir se Gundicha Mandir me jayenge. Kal hi na? Jayenge. Jab Bhagwan Gundicha Mandir me jate hain, to Swayang Mahaprabhu स्वरूप दामोदर नित्यानंद प्रभु राय रामानंद जितने उनके परिकर हैं सबको लेकर के जाते हैं, और मंदिर के बाहर और भीतर अच्छी तरह से धोते हैं। पहले तो बुहारते हैं, झाड़ू देते हैं, जितने बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं सबको फेंकते हैं, घास इत्यादि को सब फेंक देते हैं, और उसके अतिरिक्त ये बोलेंगे इंग्लिश में, और फिर उसके बाद में भीतर में जहां पर ठाकुर जी विराजमान होंगे अपने चादर से महाप्रभु उसको साफ करते हैं। क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है, यदि हम लोग अपने हृदय में भगवान कृष्ण को, राधा जी को बैठाना चाहते हैं तो हृदय निर्मल करना पड़ेगा, हृदय साफ करना पड़ेगा। इफ यू वांट दैट कृष्ण एंड राधिका शुड सीट इन अवर हार्ट, देन यू हैव टू प्योरिफाई योर हार्ट। अपने हृदय को निर्मल बनाना होगा। निर्मल कैसे होगा? कोई जागतिक डिजायर न हो, अभिलाषा न हो अपने शरीर के लिए, स्वर्ग के लिए, अपने सुख के लिए, अपने बाल बच्चों के सुख के लिए, कुछ भी नहीं, केवल कृष्ण के सुख के लिए ही हमारे अंदर में इच्छा होनी चाहिए। यदि हम कोई वैष्णव अपराध करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, ये सबसे हृदय मैला हो जाता है। इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए। और भी कूटी और नाटी जो करने योग्य नहीं है उसको भी मत करो, जो खराब चीज है, और ना जो नहीं करने योग्य है उनको मत करो। जैसे मांस मछली मत खाओ, मरुआना इधर में होता है, मरुआना कोई शराब जैसी चीज, शराब नहीं किंतु मरुआना व्हाट, गांजा भांग मत लो, गैम्बलिंग मत करो, जुआ मत खेलो, ऐसा करने से हृदय मैला हो जाता है। स्मोकिंग मत करो। यहां के देखते हैं पाश्चात्य देशों के लोग जो सीनियर डिवोटी भी हैं, प्राचीन डिवोटी भी हैं, वो गुरु का दिया हुआ मंत्र ठीक ठीक नहीं करते और मरुआना इत्यादि पीते हैं, गांजा भांग लेते हैं, फिर भक्ति कहां से होगी। स्मोकिंग मत करो, किंतु स्मोकिंग भी करते हैं और ये उनको ये अभिमान रहता है कि मैं बहुत प्राचीन वैष्णव हूं। इन सब से बचो, वैष्णव का संग करो, तब हृदय निर्मल होगा और तब फिर उसमें भक्ति होगी, अन्यथा नहीं। चैतन्य महाप्रभु जी ने यह शिक्षा दी, जब निर्मल हृदय हो जाएगा तो राधा कृष्ण जी हमारे हृदय के अंदर में बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? जगन्नाथपुरी में बैठे हैं, इसका एक इतिहास है, उपाख्यान है। एक समय नारद जी प्रयाग में बहुत से ऋषियों के बीच में बैठे थे। प्रश्न उठा, भगवान का, श्री कृष्ण का सबसे बड़ा कृपा पात्र, मोस्ट बिलव्ड कौन है, किसको कृष्ण अधिक सबसे प्यार करते हैं। नारद जी के ऊपर में भार दिया गया, ये तुम सब जगह जांच करके और अंत में रिपोर्ट करना जो सबसे बढ़कर के भक्त कौन है। नारद जी इंद्र के पास गए, ब्रह्मा के पास में गए, प्रहलाद महाराज जी के पास में गए, हनुमान जी के पास में गए, पांडवों के पास में गए, उद्धव जी के पास में गए, द्वारकापुरी में पहुंच गए। देखते 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 किंतु पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। उसी समय में वे देख रहे थे सुजो, जे कैसे हम परीक्षा करें जो कौन कृष्ण का प्यारा है। उन्होंने देखा मैया रोहिणी जी वहां के रुक्मिणी सत्यभामा आदि रानियों को बतला रही थी। उन लोगों ने पूछा मैया रोहिणी जी ये बतलाओ कि हम लोग तो 16108 रानियां हैं, कृष्ण को हम लोग वशीभूत नहीं कर पाती, कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। फिर वृंदावन में गोपियां कृष्ण को उठाती और बैठाती थी, कैसे है? उनमें क्या विशेषता थी जो कृष्ण जो कुछ करते वो कहती कृष्ण उसका पालन करते थे, उनके सर्वथा वशीभूत थे, क्या बात है? वही बतला रही थी वहां रुक्मिणी मैया। जब बतलाने लगी ब्रज की कथा, कृष्ण का सौंदर्य और गोपियों का प्रेम बतलाने लगी तो कृष्ण सुधर्मा सभा में बैठे थे, वहां पर महाराज उग्रसेन, अक्रूर और उद्धव बहुत से लोग थे। कृष्ण का चित्त चंचल हो गया और वे उठकर चल पड़े जहां पर वो कथा हो रही थी। ऐसा ही है, जहां उनकी कथा होती है जरूर पहुंच जाते हैं किसी न किसी रूप में। बलदेव जी देखे तो बलदेव जी भी उनके साथ में चल पड़े। जहां पर रुक्मिणी जी से ये सब कथा रोहिणी मैया बोल रही थी, जब दरवाजे पर पहुंचे तो वहां देखा जो सुभद्रा उनकी बहन खड़ी है, उनको रोक लिया, घर में नहीं जाना है, मां अभी रानियों को कुछ ब्रज की स्पेशल बातें सुना रही हैं, तुम उसके सुनने योग्य नहीं हो। तो कृष्ण और बलदेव जी वहीं पर खड़े हो गए और कान लगा करके वहीं से सुनने लगे और सुभद्रा भी सुनने लग गई। जब कथा हो रही थी तो कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा एकदम द्रवित हो गए। द्रवित माने उनके अंग गलगल करके पानी होने लगे, केवल आंख मात्र रही और हाथ यहां तक गल गया, पैर गल गया, तीनों का। उस समय में नारद जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। जब गिर पड़े तो बलदेव जी भी मूर्छित होकर के गिर पड़े। उस समय ब्रह्मा जी आए, भाई इनको मूर्छा से कैसे जगाएंगे। तब उन्होंने एक कौशल किया, पहले बलदेव जी को जगाया और जगा करके उनको ब्रज का वेश बनाया, उनके हाथ में बांसुरी दी और सिंगा दिया और गौवा चराने के लिए लखुटी दी और साथ ही साथ में जशोदा की मूर्ति बना दी, उसमें मक्खन दे दिया और गोपियों का, राधा जी का, ललिता विशाखा का भी मूर्ति बना दिया और ऐसे जैसे वो मानो बोलती हो, जीवित रहने वाली हो। बलदेव जी को बतलाया जो कृष्ण का तुम श्रृंगार कर दो ब्रज जैसा। उन्होंने मुकुट हटा दिया और सब वहां की जो चीजें थी हटा दी और उनको यहां पर मोर मुकुट पहना दिया, हाथों में बंसी दे दी, चराने के लिए लखटी दे दी और ब्रज के जो बेश है सब कुछ उनको बना दिया। बलदेव जी बोले, अरे कन्हैया कन्हैया उठो 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 उठो, जोर से उठाया नहीं उठ रहे थे फिर भी, अरे गैया चरने के लिए आगे चली गई, सखा लोग वहां पर तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी जाओ जल्दी चलो हम लोग चले। कृष्ण आंख मलते हुए उठे, अब उस समय देखा अपने को तो ब्रज का भाव इनके अंदर में आया, ओ हंसने लगे कुछ। देखा जी मां जशोदा जी खड़ी है मक्खन लिए, गए और उसको नित्य जैसे करते हुए हाथ से ऐसे ले लिया और चले गए। इसके बाद में गोपियों को देखा जे खड़ी हैं और गाय इत्यादि सब चरने के लिए खड़ी थी और गोपाल सखाओं की भी मूर्ति थी, उसको देखकर क्या कृष्ण सोचे जी हम तो ब्रज में ही हैं, गौओं को चराने में देरी हो गई, अब चलो उनके यहां। जबकि वहां पर गए तो चराते हुए थोड़ा और आगे गए, जब देखा जे गोपियां खड़ी हैं और कृष्ण अपनी बंसी ली और राधा जी के मुख में स्पर्श करा दिया और इस तरह से भंगी की, उसे देख करके पद्मा उग्रसेन की पत्नी दौड़ी कृष्ण को आलिंगन करने के लिए, इतना सुंदर भाव। और ये सत्यभामा इत्यादि भी कृष्ण को आलिंगन करने के लिए दौड़ी। कृष्ण को देखा था किंतु ऐसा भाव नहीं देखा था, इतना सौंदर्य नहीं देखा था। उस समय उद्धव जी ने और बलदेव जी ने उनको रोक दिया। इसके बाद में कृष्णा गोपियों से मिल करके आगे बढ़े, बोले जैसे अभी मैं जल्दीबाजी में हूं, अधिक बात मैं नहीं कर सकता, आऊंगा लौट करके तब तुमको बतलाऊंगा, मैंने कुछ स्वप्न देखा है, स्वप्न आने के बाद में दिखलाऊंगा। कृष्ण आगे गए तो देखा जी ये जमुना नहीं, यो तो विराट समुद्र लहरा रहा है, ओहो ये वृंदावन तो है नहीं, ओ ये द्वारकापुरी है। बलदेव से कहा अरे ये क्या, ये समुद्र को मैं देख रहा हूं, द्वारकापुरी ये है और ये मैं वृंदावन में हूं, ये क्या बात। तो बलदेव जी ने हंस करके बतलाया कि नारद जी तुम्हारे प्रिय से प्रियतम भक्तों को देखने के लिए ललायित थे और इसके लिए तुमने ही जोग माया के द्वारा ये सब नौ वृंदावन दिखलाया और उसमें गोपियां तुम्हारी सबसे बड़ी प्रिय हैं ये भी दिखलाया। उस समय में कृष्ण ने देखा जी नारद जी लज्जित होकर के सामने खड़े हैं, प्रभु आपको मेरे लिए ही इतना कष्ट हुआ इसलिए आप क्षमा कीजिए। कृष्ण ने कहा जी नहीं, तुमने हमको ब्रज का भाव दिखलाया इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुम वर मांगो। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा मैं वर मांगता हूं कि अभी आप अपना ये वृंदावन का चैत्र सुन करके जो पिघल गए हैं, द्रवित हो करके, केवल हाथ यहां से पैर नहीं है, केवल आंख है, बलदेव जी की सुभद्रा जी की भी, यही तीनों रूप जगत के लोग दर्शन करें और जगत से पार हो जाएं और उनको भक्ति मिले ऐसा, ठीक है ओम मस्तु। जगन्नाथपुरी में वही भगवान माधव जी, राधा माधव, वहां पर तीन रूप में है जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। जो उनका दर्शन करेगा वो बैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा, फिर उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और उन्होंने कहा जो आपकी इन मधुर लीलाओं का श्रवण करेगा किसी के मुख से, उसको ब्रज का सुंदर प्रेम प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण ने कहा जे ओ मस्त, ठीक है। तब से जो वृंदावन जाएगा, गोवर्धन में जाएगा, नंदगांव बरसाना में जाएगा, राधा कुंड में जाएगा, उसको कृष्ण का प्रेम अवश्य मिलेगा। और जो ब्रज की इन कथाओं का श्रवण करेगा, जैसे अभी हम लोगों ने वर्णन किया बर्लिन में, फ्रैंकफर्ट में वर्णन किया, उन लीलाओं को सुन करके सबको कृष्ण प्रेम होगा, यदि शुद्ध मन से हृदय मन से। इसलिए नारद जी की इच्छा पूर्ण हुई। पहले सतयुग से ही जगन्नाथ की रथ यात्रा होती थी, उसमें मंदिर से उनको लाया जाता था गुंडीचा मंदिर में, जिस दिन जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ था, तीन के रूप में वो काठ की गुड़ी सीली बढ़ती हुई आई और उसमें चक्र का चिन्ह, उससे तीन विग्रह थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। जिस दिन वो हुए उसी दिन के लिए ये नियम बनाया कि उस दिन रथ यात्रा होगी और रथ की डोरी जो खींचेगा उन सबको बैकुंठ की प्राप्ति होगी, भक्ति को सुलभ करने के लिए। इसलिए मंदिर से गुंडीचा महाप्रभु जी जब आए तो उन्होंने भाव को एकदम बदल दिया। और बदल के क्या किया, कृष्ण कुरुक्षेत्र गए हैं सूर्य ग्रहण में, गोपियों को मालूम हुआ, गोपों को, नंद बाबा को, वो लोग भी वहां आए, वहीं पर उन दोनों से मिलन हुआ। गोपियां कह रही हैं मिलन तो हुआ किंतु मिलन में आनंद नहीं, यहां पर हाथी घोड़े इत्यादि हैं, वसुदेव देवकी हैं, भीष्म पितामह इत्यादि सब लोग हैं, ये प्रेम यहां नहीं होगा, आप वृंदावन में चलिए, वहीं पर हम लोगों का मिलन होगा सुंदर। आहुष्यते नलिनाभ पदारविंदम योगेश्वरैरपि सदात्मनि गोष्ठराष्टम। कृष्णस्य तद् भगवत संसार कु पतितो
तरणावलम्बम
तृणावलम्बक
गेहम
दिशाम। ओ कृष्ण, आप वृंदावन में पधारिए, जहां पर कुंज है स्वच्छंद, वहां पर मिलन होगा हमारा। हम लोग बंसी बट में मिलेंगे, कोई भी दूसरा नहीं होगा, न हाथी न घोड़े न और ये सब लोग, मिलन होगा। इसलिए कृष्ण को अपने मन रूपी रथ में बैठाया और खींच करके वृंदावन में ला रही है। ये भाव महाप्रभु ने उसमें जोड़ दिया। तब से गौड़ीय वैष्णव का प्राधान्य रहा, और इस भाव से कि कृष्ण को हम वहां से कुरुक्षेत्र से वृंदावन में ला रही हैं। सही तो परान नाथ पाइनु जहां लगी मदन दान धुड़ गए। ये रास रथ यात्रा का प्रधान उद्देश्य है, कृष्ण को अपने हृदय में बैठाना है। अभी हम लोग द्वारकापुरी में, वृंदावन में है, कृष्ण चले गए हैं, उनको फिर से ले आ करके हृदय को निर्मल कर करके बैठाना, यही रासलीला का। थोड़ा सा ट्रांसलेशन कर दो तो।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो एज बिफोर श्रीपाद जी कृष्ण प्रभु वाज स्पीकिंग, गुरुदेव वांट टू चेक हिम टू मेक इन डिटेल्स, सॉरी मेक इन ब्रीफ। आई थॉट गुरुदेव नो नीड टू मेक मी टू टेल इन ब्रीफ, आई ऑलरेडी मेक इट ब्रीफ वेरी इजीली। So, today is Gundicha Marjan in Jagannath Puri. Tomorrow is car festival. So many millions of people will be gathered in Jagannath Puri. So, prior to that is Gundicha Marjan. Srila Gurudev explained very clearly and nicely what is Gundicha Mandir Marjan. Gundicha Mandir Marjan means we want to keep Radha Krishna in our heart. For that, we have to make our heart very pure. How it will be pure? We have to make our heart free from all kind of material desire. First of all, when Mahaprabhu with his all associates, like Sriman Nityananda Prabhu, Advaita Acharya Prabhu, Swarup Damodar Prabhu, Ayaravananda Prabhu and others, so many associates has come from different places, especially from Bengal. First of them, they broom the area, outside and inside, clean it water, then small pebbles, then dust, everything. Once we attend Gundicha Mandir Marjan under guidance of Gurudev, I remember that fact in front of me now. So I have to make our heart pure, have to cut off all attachment with family, kids and etc. And we have to forget their happiness. We have to remember only how we can make happy to Krishna. If Hrida is impure, then he could not make happy Krishna. How his heart will be impure? By criticism Vaishnavas. We want or not, sometimes we bound to do that, but it's not proper. And if you do Guru Avagga, neglecting Gurudev's order, moreover, Kuti Nati. Sriman Mahaprabhu told to Rupa Goswami Pad about Kuti Nati. Ku means bad thing and Na means negative thing. Who is prohibited in scriptures that this is bad, don't do that. And what is completely opposite of our scripture, we should not do that. We have to give up kuti nati. Moreover, we should not take meat, egg, fish, etc. Today Guru was telling in Amsterdam, meat means M-E-E-A-T. To whom I eat today, they'll eat meat tomorrow or any other day. because in every action is some reaction, so don't take any meat. And egg means the womb of mother, so don't take egg also. Moreover, don't take marijuana, or don't drink alcohol, don't gamble, don't play gambling, and no smoking.
That's no ganja.
I have seen even in Western world, who is very senior and sincere devotee, they proclaim themselves. Even they are not chanting their mantra given by Gurudev, they are not chanting properly. And they are taking marijuana. How they can proclaim bhakti in their heart? And they have false ego that we are very sincere and senior and ancient devotee. This is not proper to make this false ego. So, this is the teachings of Mahaprabhu about Gunnicha Marjan. Have to make your heart pure, then Radha Krishna will sit in your heart as a throne. If you not do, how Radha Krishna can sit inside your heart? Now Gurudev came in another text. Once so many munis, sages and rishis, they are discussing in Prayag in India, and Sriman Narada Rishi also there. Then they discuss who was the best devotee of Krishna. How to take a decision who is the best devotee? Then they put charge on Narad Rishi. Oh Narad, you can travel all over the world and you can give the report who is the best devotee of Krishna. Then Narad first of all went to heavenly planet to Indra, then Sottalok to Brahma, then Sutal to Prahlad Maharaj, Ajodhya Hanuman, and in Dwaraka Uddhavji, and so many queens of Dwaraka he met everywhere. And he came a decision, but it is not complete decision, so he could not judge yet who is the best. So he was searching, then he was staying in Dwaraka. Once, the queens of Dwaraka, headed by Rukmini and Satyabhama, they request Mother Rohini Devi, means Mother of Baladev Prabhu, O Maya, we have heard that Krishna is, and we have seen by ourselves, we realized that we are 16,108 queens. All of our matchless, beautiful, so many qualities. Still we could not control one Krishna. But other hand, Krishna when he is sleeping with us, even he call out for his cows, sometimes friends, sometimes parents, sometimes Sokis, especially Radhika. What is the speciality among Braj Gopis? Can you tell us please? Then Rohini Devi became angry and told, okay, I can tell, but whenever I describe, Krishna may come, then everything will spoil. So who will be guard outside the gate? That among 16,108 queens, no one is agreed to be a guard. Now I want to hear, I want to listen, no one is ready. Then everybody, they suggested, better Subhadra can stay outside as a guard, because if we'll stay there, Krishna will not care for us. My sister is there, he may care. So they put Subhadra Devi, appointed Subhadra Devi as a guard to check Krishna, because the rule of Krishna, Madhbhakta yatra gayanti tatratisthami narada. Whenever Krishna's devotee describe Krishna's sweet pastime, in any form he must be present there. So they appointed Subhadra Devi as a guard. And at that time Krishna was in Sudharma Sabha, his royal assembly, headed by King Ugrasen, Uddhav, Akrur, Satyaki, so many are there. And in this other hand, Mother Rohini describing Krishna's pastimes. How Krishna is beautiful. Because Krishna's beauty is described in three places, by Brahmaji, by Jagapatni, the Brahmanis, and by Braj Gopis. When Mother Rohini narrated about Krishna's beauty, narrated by Gopis, Varaha Pidam, and how Gopis love Krishna, then Baladev Krishna became restless, could not keep him silent there, and he left the Sudharma Sabha and coming from there towards where Katha is going on. And Baladev Prabhu also followed to Krishna. When they came on the gate, Subhadra Devi checked them. Oh my dear brother, today you are not allowed to enter there inside, because Mother Rohini Devi is speaking Harikatha and he ordered me and appointed me as a guard. Today I am not allowed to enter inside both of you, brother. You have to stay here.
So when Subhadra checked them, then Krishna and Baladev both are keeping their ear beside the door and listening Harikatha, narrated by Rahini Devi and Subhadra too. When they are listening, their body become to start melt, and only eyes remain there, big size, like you can see the Jagannath Dev deities there, Jagannath Subhadra Baladev. Hand became melted, leg became melted, and it became Subhadra Devi also. And another jiva then became faint. After hearing, both Sri Krishna and Baladev became faint there. Then what to do now? How to bring Krishna's sense again? Then Brahmaji appeared there from Satyalok in Dwaraka. Then Brahmaji makes sense in Baladev Prabhu. When Baladev Prabhu came in sense, Brahmaji requests him, "Oh Baladev Prabhu, you have to make Krishna in sense. First you decorate yourself as a cowherd boy. Then you make dress Krishna as a cowherd boy." Baladev Prabhu did so. But Brahmaji gave him singer, like Krishna's flute, Baladev Prabhu, another playing instrument, singer. In take lakuti means to grazing the cows on stick, and completely broad dress. After dressing Baladev Prabhu himself, he dressed to Krishna also, Baladev Prabhu, as a like broad cowherd boy. Took up golden crown, put instead of golden crown, pick up feather, take up his other thing with royal dress, and put completely in broad dress, and told, Oh Krishna, get up, too late, you have to go for cow grazing." Then Krishna woke up, then Baladev Prabhu grabbed him. Oh Krishna, get up, you have to go for cow grazing. Look, cow are going ahead, sakas are early, mother Yashoda too much early, Nandava very early, why is making so late? Krishna all of a sudden woke up, rubbing his eyes. Oh, what happened? Yes, it became so late for cow grazing. How come I am sleeping so late? All sakas are going ahead, cows are going ahead. Baladev Prabhu told, "Oh Krishna, I am going ahead, don't delay please." Then Krishna, completely absorbed in Braj mood. When he go few steps, he saw Mother Yashoda holding butter and very odd. And Brahmaji arranged through Vishwakarma, all the statues look like they are about to speak, and so attractive. You could not understand it is statue or living human being. So Krishna went to Mother Yashoda, and like small baby, when they want to take from their parents, they used to jump like they are not 2 feet, like 1.5 feet, like this. And going there, he took butter from Mother Yashoda and ran. Seeing this, all became surprised. Oh, how beautiful Krishna's beauty is. Then he went little ahead, and he saw Srimati Radhika and Gopis. And seeing Radhika, Krishna's beauty became so extreme. And he touched Krishna, Radhika's chin with his flute. "Oh, Radhika, don't worry, today I became late. I have a dream. When I will come back, I will tell the whole dream. It is not a true, merely a dream. Don't worry for that." When they all saw Krishna with Radhika's this pose, even the mother of Kamsa, she was too old. Some desire came in her, want to embrace Krishna. She ran towards Krishna, but Uddhavji checked him. Then Rukmini and Satyabhama, they want to also run to Krishna to embrace, seeing the beauty. Although they are seeing Krishna so many years, but never they saw Krishna so beautiful, but they checked by Uddhav.
No, Subhadra Devi perhaps.
Now Uddhav check Kuru Shubhadra. Then Krishna went a little further. So many cows are there, about going for grazing. After going little ahead, oh my goodness, what happened? Look towards him and look towards ocean. I am in broad dress, but it does not look like Jamuna. How come? I am in peacock feather, flute, and instead of Jamuna, ocean is here? What is the cause? Then he told Braja Baladev Prabhu, "Yes, you are in Dwaraka. Because that all munis and rishis, they appointed Naradji, who is your best devotee. For that, when he became faint, that According to desire of Brahmaji, I put you Braj dress. So everyone can know how qualified your Braj Bhaktas are. So we did so. And Narada Shiva was standing there, keep his face down and became very ashamed. Narada told, O Prabhu, please excuse me. Due to myself, you have to do some, you get some hard time. I don't want to do you, but I appointed by Rishi, so please excuse me, excuse me. Then Krishna told, no, don't worry. For you, you remind me Braj and Brajbhav, everything. So ask any benediction, don't worry. Then Naradji told, O Prabhu, when you are listening Harikatha, narrated by Mother Rohini Devi, which form you, your melted form, it must be anywhere in the world, and devotee will see your, that your darshan is going to Vaikuntha planet. Then Krishna told, so be it. Then you can ask any other benediction. Then Naradji told, whoever took darshan your Braj Dham and listened your Braj pastimes, they must be Braj Prem in their heart. Krishna told, all right. Srila Gurudev told, like we described in Frankfurt in Germany, whoever listened the Harikatha, one day they must attain Krishna Prem, there is no doubt. Prior to Sri Chaitanya Mahaprabhu, there is a car festival. How it happened? Three very log of wood, the trunk, came through ocean, and then from that they make Jagannath, Baladev and Subhadra. In which date it happened? From that date, car festival start in Jagannath Puri. Every time from Jagannath temple, they bring in Jagannath Dev to Gundicha Mandir, Marjan, Gundicha Mandir. Whoever pull the card of Jagannath Dev, they get liberation, means they will go to Vaikuntha planet. But so many millions of people, very hard to get in and pull the Jagannath Dev's card. Once he went in Jagannath Puri during card festival with Gurudev, so many, and then so many devotees was there, by causeless mercy of Gurudev, I entered in Jagannath Dev's front and pulling the card, the rope, and I called Rasananda Prabhu. Then the police told, in Udiyan language, you have entered, why calling to you? We will throw you up from there also. Then I came out from there. I think maybe Rasananda can remember this fact. When Mahaprabhu came in this world, after his renounce order, when he leaves, by the order of Mother Sochi, he completely changed the idea. Mahaprabhu gave this idea that during solar eclipse, Krishna came to Kurukshetra and all Brajavasis came to Kurukshetra also. And they meet with Krishna. There is a meeting, but Gopi is not happy at all. Gopi is told to Krishna that Anet Hridayamon, Mormon Vrindavan, Manevane Akkari Mani, Tahatumar Padadoy, Karav Jadi Udoy, Tavetumar Purna Kripa Mani. Others heart like forest, but our heart in Vrindavan. If he is really happy with us and want to please us, then please come in Vrindavan. Here are so many kings, Bhishma Pitamaha, all Pandavas, Devaki, Vasudev, so many elephants, horses, we don't like this. So better you can come Vrindavan, we will meet in Bansiwat, no one is there, no elephant, no horses, no kings. So Krishna told, mentioned in Srimad Bhagavatam, Ahuschati Nolinanabha Padarabindam, Yogeshwaram Hridaya Chinta Vidhim Achinta Bodhai, Sangsara Gopapatita Tranavalamam, Giham Jusamopi Manasudhya Sadhana. Krishna is telling to Gopis to meditate upon him. Gopis told, how is possible? We are simple village girl. We not able to meditate upon you. So better you can come in Vrindavan, then your meeting will be successful. Then they are telling, when they are pulling card, Saito Parannath Painu Jahalagi Madana Dharani Jurugenu, that we have made same our soulmate for whom we are lamenting so much and desire came in our heart. By this way, under guidance of Mahaprabhu and by idea of Mahaprabhu's, now Gaudiya Vaishnavas from that time, from Jagannath Puri temple to there, bringing Jagannath Dev in Gundicha Mandir. And this is the mystery of Kat festival, so which you have heard from Srila Gurudev, I try to narrate as much as possible. If any short come, please excuse me. And whenever you time, be under guidance of Srila Gurudev, do Brajamandal Parikrama, Navadi Parikrama, Jagannath Puri Kart Festival, where we get time, don't forget to do this under guidance of Gurudev. Hare Krishna. Bancha Kalpata Rupasya Kripa Sindhu Bhaye Vacha Paritanam Pavane Bho Vaisnave Bho Namo Namo.
All living entities, they want happiness and peace of mind. But anyone in this world except pure Vaishnava, none is happy, no peace of mind. Especially if you are healthy, you are wealthy, your relatives, your son, daughter, very qualified. But who will stop your old age? Whole scientists of world, doctors, they cannot check a moment this coming old age. Must come. You should not think that what we are, oh, very young, smart, one day this beauty will be gone. Teeth will come, sight will go away, so many kinds of rogues will come, and one day you are bound to give up your body. You cannot take a farthing with you. Money cannot save you or help you. Your children, wife, husband, they cannot help you. You must give up this body. You think that we are not body. This is a bag of urine, blood, latrine and so on. You are soul and Krishna super soul is there. Before your death, you should try to realize it. How? In the association of Vaishnava. If you are linked with Vaishnava, he will save you from all these things. No old age. You will cross the endless pain of earth, endless birth and death very easily, and Krishna prema will come. This is the way of peace and happiness. One thing also you should remind, what Rupa Goswami has told in Upadeshamritam, Manaso
Bacha
Begam Manasakrutha Krodha Begam Jihvabe. Try to conquer your mind. It should not go here and there. Only earn some money to maintain your life or maintain your family. Not so much. Otherwise, so much affluence you will collect, then your whole attention will be go there. You cannot give attention to Krishna and Sadhu Sangha. So you should control your anger, especially your tongue, and be in Sadhu Sangha. If by chanting, remembering, you are not realizing something, even go on, if no test, even go on. Very soon, by chanting and remembering, in the guidance of Guru Vaishnava, very soon you will realize. Especially, Tannama Rupa Charitadi Sukrittananu Kramena Rasana Manasi Niyojya. First, you should not criticize any Vaishnava. Don't take, eat, mix, acts, smoking, especially gambling, and marijuana. If you will gamble, your whole property will go. Yudhishthira Maharaj has shown how he lost his kingdom, his wife, his brothers, everything, and he had to go to
exile
for
12 years
and 1 year
more in hiding.
And for that, Oh, Mahabharata. War, Mahabharata was fought.
World War took place.
So we should be careful. Tannam rupa charitadi. Chant by ton the name of Krishna. And remember the sweet pastimes of Krishna related to that name. As Damodar name, oh, how Yashoda Devi, with love and affection, binded Krishna. Like Rasbihari, oh, how Krishna is dancing in Ras and controlled by his gopis. Like so Madhav, like Keshava, what Keshava is doing? Krishna is Keshava, but he is curating. Caressing the hair of Krishna. So he is Keshav. He is Keshav because he is the God of all Brahma, Shankar and Vishnu. All. So he is Keshav. So remembering the sweet pastimes of Krishna and Gaur chanting. Be in Vrindavan. But if you cannot be in Vrindavan, then by mind, even you should be always there. Like here, we are in Vrindavan. Always remembering Vrindavan here. In Berlin, we were in
Frankfurt.
Frankfurt. But we were what doing?
Discussing about Vrindavan.
All were thinking that we are in Vrindavan. So be in Vrindavan by mind. In the guidance of Guru, Rasik. And who is merciful to you. And thus, you should be there in the guidance. This is the essence of all
advice.
Teachings, advising. So you should follow. Daily you should do. By remembering Krishna name, remembering what Guru has given mantra, it will save you. Your money will not save you. Your relatives cannot save you. But these will save you from all things. So, what was telling?
Tannam
rupa charitadi.
So,
if you want to be happy, and keep Radha Krishna jugal in your heart. Try to be in the association of pure Vaishnava. Don't always engaged in making money. Because you cannot take with you. They cannot help. So earn money only to maintain your life and maintain your family only. And give your whole energy to Krishna. To stop your endless pain of birth. And to be happy here in transcendental world. Gaur Premanande.